आरती में जो ये लाइन आ रही है, सब जी में उस जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा आधार। तो सब जीवों से प्रेम का यहां मतलब यही है कि सबके प्रति आपके अंदर दया भाव, सेवा भाव होना चाहिए। उनके अंदर कोई तकलीफ है, उन्हें कोई ऐसी जरूरत है जो आप पूरी कर सकते हो लेकिन उसके कारण वो परेशान हैं, तो कोशिश करनी चाहिए उसका दुख दूर करने की, जो भी आपकी सामर्थ्य है। भी आप विचार से भी सेवा कर सकते हो, कोई परेशान है उसको परेशानी गलत फहमी के कारण ही परेशान है या ना समझ के कारण परेशान है, तो विचार की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसको मन की सेवा भी कहते हैं, मन में तो विचार ही उठते हैं ना। हाँ, और तन मन धन की तीन प्रकार की सेवा कही जाती है, और तन की सेवा तो जानते ही हैं, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई रोगी व्यक्ति है, बेचारा अपना काम नहीं कर सकता या किसी कारण कोई सफ़र कर रहा है वो, तो उसकी मदद आप जो भी कर सकते हैं, उसका मार्केट का काम कर सकते हैं, उसका शारीरिक कोई हेल्प कर सकते हैं, इस प्रकार से शरीर से जो भी सेवा आपकी बन सकती है करना चाहिए। और धन की तो जानते ही हैं, ज़रूरतमंद की जो है धन से जो है आप उसके लिए खाने के पदार्थ भी ला सकते हैं और ज़रूरत की चीज़ें भी ला सकते हैं, उसकी मेडिसिन भी आप ला सकते हैं। तो तन मन धन से जो सेवा है सब जीवों की, वो प्रेम करके करना चाहिए। प्रेम करके क्यों? क्योंकि सब के अंदर प्रभु ही विराजमान है, प्रभु ही उनका जीवन चला रहे हैं, और मुझको ये जो मौका दिया है उनकी सेवा करने का, ये प्रभु ने ही दिया है। मैं कौन होता उनकी सेवा करने वाला? उनके यदि प्रारब्ध में मेरे द्वारा सेवा नहीं लिखी है तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? तो जब सेवा करने पहुंचूं तो मुझको प्रभु की याद आ जानी चाहिए कि अंतर्यामी प्रभु इनके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, मुझको प्रेरणा दे रहे हैं इनकी सेवा करने की और इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेवा लेने की। तो जो आपको प्रभु की याद आएगी तब आपको ये याद भी साथ में आएगा कि प्रभु इन हाथों से ये कार्य करवाना चाह रहे हैं। तो जहां आपको प्रभु की याद आएगी आपके अंदर स्वाभाविक रूप में एक प्रेम पैदा होगा, एक अपनापन पैदा होगा। जैसे परिवार में हम होते हैं, क्या होता है, शरीर तो सबके अलग अलग हैं लेकिन एक भाव होता है कि मेरे हैं। क्यों मेरे हैं? क्योंकि एक ही माता पिता की सब संतान हैं, माता पिता इनके कॉमन हैं, समझ नहीं, और उनकी सभी संतान हैं, इसलिए आपको उसके अंदर भेदभाव नजर नहीं आता, प्रेम से उनकी देखभाल आप करते हो। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर के परिवार के बच्चों के माता पिता एक हैं, उसी प्रकार ये जगत परिवार के माता पिता एक ही हैं, उनका नाम है परमेश्वर, सबके हृदय में विराजमान है। और हम बार बार सुनते भी हैं शास्त्र के द्वारा कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो जब उनका निवास है सबके देह के अंदर, तो देह का संचालन तो वही कर रहे हैं। तो मैं जो सेवा करूंगा तो प्रभु देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उसको? कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, कोई वो तो चेतन वस्तु है ना, चेतनता है वो। तो मुझको मेरे ही प्रभु देख रहे हैं। जहां आपके अंदर ये भाव आया फिर आप भेदभाव क्यों करोगे बताओ मुझे? लापरवाही क्यों करोगे कि प्रभु नहीं देख रहे हैं, ये लापरवाही कर रहा है, मन में कुछ खोट है या मन में कुछ स्वार्थ है, ऊपर से सेवा कर रहा है, उनको नहीं पता क्या? तो प्रेम करके सेवा तभी की जाती है जब वहां से कोई भी रिटर्न मिलने की उम्मीद आपको ना हो या रिटर्न मिलने की आशा ना करें। यहां तक कि यह भी नहीं कि दो तारीफ के शब्द मुझसे बोलेगा, मुझको धन्यवाद बोलेगा, वो इतनी भी आशा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी आपके अंदर वो दया है, कंपेशन है नहीं, और दया करके ही आपके अंदर वो जो ईश्वर करके आप उसकी सेवा करते हो कि ईश्वर इसकी जीविका को चला रहा है, इसके जीवन को चला रहा है, जहाँ आपके अंदर ईश्वर भाव आता है तो उसी समय आपके अंदर प्रेम की करंट भी दौड़ती है। ये अपना है, ईश्वर का मतलब ही वो अपना है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के मन के अंदर एक मैल आ गया। मैल क्या आ गया कि जहां वो रहते थे वहां पास ही इनकी बस्ती थी, जिनको हम कहते हैं ये जमादार वगैरह होते ना, है नहीं, मल वगैरह जो साफ करते हैं पहले जो, है नहीं। तो उनके मन में एक घृणा का भाव आ गया कि जैसे गंदे लोग हैं या नहीं, या जो भी भाव आ गया उनके मन में। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत बात है। वो कहते हैं कि माँ ही सबका पालन करती है, मेरे शरीर का भी पालन कर रही है, इनके शरीर का भी पालन कर रही है, और माँ ही अंदर विराजमान है, तो मेरे अंदर ये नफरत का भाव क्यों आया। तो उन्होंने इसकी दुरुस्ती करने के लिए क्या किया, सुबह ही उठे और पहले इन लोगों के घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि केवाड़े भी लगवा सके, तो अक्सर ये टाट के पर्दे घर में होते थे नहीं, और बेचारे रोटी भी मेहनत करके मांग के उनका जीविका चलती थी। पहले हम भी देखते थे हमारे घरों में भी जब वो मैला साफ करने लेडीज आती थी तो आफ्टरनून में फिर वो रोटी मांगने आती थी, उनके अगर खाना नहीं बनता था, वो रोटी जो मिलती थी इनको मेहनत की उसी से अपना गुजारा चलता था। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या करा कि सुबह सुबह उनके घर में वो पहुंच गए और उस समय उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो उन्होंने अपने को ही सजा देने के लिए कि मेरे मन में मैल आया क्यों, उस दाढ़ी से उन्होंने उसका आंगन साफ किया और चुपचाप घर वापस आ गए। अब आप देखिए कि जो ज्ञानी बनना चाहता है, जो ईश्वर से भेंट करना चाहता है, वो कितना अलर्ट होता है अपने मन की हरकत देखने के लिए कि मेरे मन में ये मैल आया क्यों, ये भेदभाव क्यों आया, ये नीचे लोग हैं मैं ऊंचा लोग ऊंचा हूँ, ये भंगी है मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात आई कैसे मेरे मन के अंदर। तो उसकी दुरुस्ती के लिए उन्होंने ये काम किया। तो ऐसा व्यक्ति बताइए, यदि उसकी जरूरत पड़ जाएगी, मान लिया उसके परिवार में कष्ट आ जाए, तो उसकी प्रेम से सेवा करेगा या मैं भंगी की सेवा कर रहा हूं, ये भाव उसके अंदर आएगा नहीं आएगा उसके अंदर। तो इसीलिए आप देखिए ना कि जितने भी प्राचीन सत्पुरुषों के भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं नहीं? अब श्री कृष्ण जो है भंडारा हो रहा है तो झूठी पतले है उठाने की ड्यूटी ले रहे हैं, मान लिया वो सत्पुरुष हैं अवतार हैं, लेकिन उनका कर्म कैसा है, कर्म तो यही दिखा रहा है ना कि नीच से नीच कर्म करने में या छोटे से छोटा कर्म करने में मन के अंदर ग्लानी नहीं आनी चाहिए। यदि ग्लानी आ रही है तो सीधा सा मतलब है कि मैं देह के अहंकार में खड़ा हुआ हूं। ये ग्लानी आती है हमेशा देह करके, क्योंकि देह के साथ मन जुड़ा हुआ है, देह स्थूल शरीर है और मन सूक्ष्म शरीर है, और ये दोनों एक साथ रहते हैं, अकेला कभी नहीं रहेगा, ना अकेले स्थूल देह रह सकती है ना अकेला मन रह सकता है, जब भी रहेंगे ये दोनों साथ ही रहेंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं प्रेमी जब इस देह की मृत्यु होती है ये मन जीव के संगी चला जाता है, और इस मन के संकल्प से ही देह का पुनः तुरंत ही निर्माण हो जाता है, क्योंकि अकेला रह नहीं सकता मन, बिना देह के मन रह ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे स्वप्न की रचना जैसे ही नींद आती है तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि एकदम से गहरी नींद नहीं आती, पहले नींद आएगी तो हल्की नींद आएगी, तो तुरंत ही आपके अंदर क्योंकि संकल्प है और देह का अटैचमेंट खत्म हो गया वहां पर, तभी क्या होगा, तुरंत ही मन नई देह खड़ी कर लेगा जिसको हम स्वप्न कहते हैं, और नया संसार खड़ा कर लेगा। तो हाँ, तो ये इंस्टेंट प्रोसेस है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस, इसमें कोई, इसीलिए भूत प्रेत की योनि कोई नहीं होती, जब है ही नहीं, बिना देह के मनुष्य होता ही नहीं है तो भूत कहां से बन जाएगा वो। इसलिए आप पढ़ो समता विलास के अंदर विज्ञान, भूत प्रेत का विज्ञान साफ पता लग जाएगा आपको, कि प्रिंसिपल है ना उसका, सिद्धांत उसके पीछे, ये कि कल्पना छोड़ना लोगों की मान्यता है नहीं। तो इसलिए महाजी मने करते थे भूत प्रेत की बातें नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में कल्पनाएं होती हैं, सिद्धांत पता नहीं होता, वो कल्पना उनके अंदर फिर उजागर हो जाएगी, फिर उनको भूत दिखाई पड़ने लगे। तो गांव में क्यों लोगों को भूत दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि गांव में बातें ये करते रहते हैं वो लोग। ये बातों का प्रभाव है जो संकल्प बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, स्थूल रूप में भी खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो सत्पुरुष जो इस तरह की जो रचना रचते हैं, उनका जो जीवन समाज में के बीच में बीतता है, आदर्श इसी रूप में होता है कि उनकी उनका हर एक्शन, उनकी हर क्रिया कुछ सीखने के लिए होती है। अब श्री कृष्ण झूठी पतले उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अवतार होने के बाद भी इतनी उनकी मान्यता, इतना नाम होने के बाद भी, इतने ऊंचे ऊंचे कर्म किए बचपन से ही उन्होंने, उसके पश्चात भी देखिए क्या कर रहे हैं। इस निरअहंकारिता की वजह से ही उनके गुरु ने, दुर्वासा ने उनका टेस्ट लिया था। जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, उनका नाम हो गया सब जगह, है नहीं, जब वापस वो द्वारिका पहुंचे तो वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। देखो मेरे शिष्य के मन के कोई अंदर कोई अहंकार तो नहीं आ गया कि मैंने युद्ध जितवाया या इतना बड़ा काम किया, है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कृष्ण तुम हमारे शिष्य हो और मैं तुम्हारी नगरी देखना चाहता हूं। तो उन्होंने जो है वो रथ मंगा दिया। तो बोले नहीं, ये तो हिंसा है, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो रथ पर नहीं बैठ सकता, तुम मेरे शिष्य हो, तुम और रुक्मणी यदि रथ खींचो तब मैं बैठ सकता हूं। अब देखिए परीक्षा थी, श्री कृष्ण की भी परीक्षा थी। तो उन्होंने कहा भाई, सहर्ष कह दिया, उन्होंने कोई मिनट नहीं लगाया सोचने में, रुक्मणी और कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया और खुद जो है रथ में जुट गए और दुर्वासा ऋषि रथ में बैठ गए। अब सोचिए जिस राजघराने में कृष्ण हैं मौजूद, जिनका राज्य है वो, नहीं नहीं, उस राज की गलियों में वो घूम रहे हैं रथ लेकर, प्रजा देख रही है कि हमारे नायक कृष्ण को ये क्या सजा दी जा रही है, ये गुरु उनके जो हैं ये क्या कर रहे हैं। बीच बीच में चाबुक भी पड़ती थी कभी कभी, नहीं नहीं, कि भाई ठीक चलो। जब सारी नगरी घुमा दी, घुमाने के बाद कृष्ण खड़े हुए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव और क्या आज्ञा है। तब गुरु ने देखा कि इसके अंदर तो लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, कोई जिसे कहना चाहिए कि आदमी संकोच होता है, अपने राज्य में घूम रहा हूं मैं, लोग क्या कहेंगे, संकोच भी नहीं है। तब उन्होंने कृष्ण को गले लगाया कि कृष्ण अब कोई ज्ञान मुझको तुम्हारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए नहीं बचा, तुम पूर्ण हो। तो देखिए कि मतलब कि सत्पुरुषों के जीवन से ही तो सीखा जाता है कि हम किस अहंकार में जीते हैं, देह के अहंकार में कैसी कैसी गलतियां करते हैं, कैसे कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, समझे। तो इसीलिए प्रेम की जब बात आरती में आ रही है तो प्रेम की बात इसी वास्ते आ रही हो। सब जीवों से प्रेम आप तभी कर सकते हो जब अपने देह के अहंकार से आप धीरे धीरे मुक्त हो। एकदम से तो मुक्त नहीं हो गए आप, लेकिन अलर्ट तो रहोगे, ये विवेक तो आपके अंदर बना रहेगा। सत्पुरुषों की या जो जीवन है, जो देखते हो आप, सुनते हो, पढ़ते हो, ये तो दिमाग में घूमता रहता है आपके। तब उस विवेक के प्रकाश में आप जीवों से, जीवों के प्रति दया, निष्काम भाव से, तो निष्काम भाव से दया करना, इसी का नाम प्रेम है। और प्रेम क्या होता है? बाकी प्रेम तो आप केवल ईश्वर से कर सकते हो, क्योंकि प्रेम की वस्तु केवल वो है, बाकी सब तो माया है। तो हमारे लिए जो दृष्टिकोण दिया जा रहा है सत्पुरुष के द्वारा, वो यही दिया जा रहा है। इसीलिए अब आप विचार करिए जरा, आपसे कहा जाता कि आप अपनी ईमानदारी की कमाई का, बेईमानी की कमाई तो परमिशन कोई नहीं है, क्योंकि बेईमानी का मतलब होता है अनधिकार चेष्टा, दूसरे का हक धोखे से हासिल कर लेना। मैं टेबल पर बैठे हुआ हूं ऑफिस की, और किसी का काम आया, जेन्युइन वर्क है उसका, मैं कहता हूँ दो दिन फाइल रोक ली जाएगी इसकी, तो ये अपने आप कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाएगा, काम तो मैं कर ही दूंगा इसका, काम को तो मैं डिनाई नहीं कर रहा। तो विचार करो, उसका अधिकार है, उसकी अपनी कमाई है, कैसे उसने पैसा कमाया है आपको नहीं पता, लेकिन आपकी नजर उसकी पॉकेट पर है। अनधिकार चेष्टा है या नहीं है? लेकिन आपका हृदय इतना कठोर हो जाता है, नहीं, ये आपको अनधिकार चेष्टा नजर ही नहीं आती, कहती है ये तो भाई चलन है, समाज में चलता है, हम भी चला रहे हैं तो क्या बात है। उनके लिए तो ईश्वर गायब है, उनके लिए जीवन में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। तुझको तो होश है, तुझको तो पता होना चाहिए ईश्वर कोई पार्शियलिटी करता है, जिस ईश्वर को तू मान रहा है तू पार्शियलिटी कर रहा है, तो दूसरे का हक जो है वो जबरदस्ती ले रहा है, उस पैसे पे हक उसका बनता है ना, तू ले रहा है उससे। तो इसीलिए सोसाइटी में क्या चल रहा है, इन जनरल क्या लोग कर रहे हैं, इससे चीजें डिसाइड नहीं होती। ईश्वर की कुदरत का क्या कानून है, ईश्वर क्या मार्गदर्शन कर रहा है, नहीं क्या शास्त्र में उसकी बातें हमको सिखा रही हैं, क्या सिखा रही हैं हमको, हमें हमारी नज़र तो वहां रहनी चाहिए, दुनिया से मेरा वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता ईश्वर के साथ में। तो ईश्वर का जो कानून है, ईश्वर जो अवतार लेकर गुरु बनकर शिक्षा दे रहा है, मेरे दुख को दूर करने के लिए दे रहा है वो शिक्षा। देखिए आप, गुरु भी मेरे ऊपर दया करके, मुझसे प्रेम करके, मेरा जो है वो दुख दूर करने के लिए मुझको उपदेश दे रहा है, लेकिन मैं क्योंकि अज्ञानियों के बीच में पला हूँ, उनके वेज एंड मीन्स में सीख लेता हूँ और गुरु की बात, शास्त्र की बात में नकार देता हूँ। तो इसीलिए उनके अनुसार जब सोचते हैं तब पता लगता है कि ये तो भाई मेरा ही भाई है, अरे एक ही ईश्वर का मैं भी हूँ, एक ही ईश्वर का ये भी है, तो मेरा ही भाई है, मैं भेदभाव के साथ कैसे करता हूं, इसका अधिकार तो इसको मिलना चाहिए। और मेरा विकास करने के लिए ईश्वर ने यह नियम दिया कि तू अपनी ईमानदारी की कमाई का 10% दीन दुखों की सेवा में लगाना, इसी को धार्मिक कार्य कहते हैं। और क्या धार्मिक कार्य है, किसी की विचार से सेवा करो, उसके लिए व्यवस्था करो, किसी की रोटी पानी से सेवा करो, उसके लिए व्यवस्था करो, किसी का रोग दूर करने के लिए नहीं आप व्यवस्था करो, सारा जो है वो उसी में आता है, ये सब धार्मिक सेवाएं हैं। तो इसको यदि आप निष्काम भाव से कर सको, निष्काम का मतलब ये होता है, निष्कामता में दो चीज आती है, देखो कि इस सेवा करने के पीछे मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे इसका रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। नंबर दो, इस कर्म को, इस पायस कर्म को करने के बाद, इस पवित्र कर्म को करने के पश्चात मुझको इसकी याद भी नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये कर्म किया। इसका मतलब ना उस कर्म की याद आ रही है, ना उसके फल की याद आ रही है, तब आप पूरी तरह से निष्काम हुए। क्यों, ये स्थिति कब हो सकती है आपकी, जब आपके अंदर ये भाव पक्का बैठे हुआ है और हर वक्त आपके अंदर ईश्वर की याद बनी हुई है कि कारण करता प्रभु है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, उसके अंदर अपना कर्तापन है ही नहीं, वो ईश्वर को ही करता जान रहा है, तो इसलिए किसकी याद आती है? आप कुछ करते हो तो याद आती है ना, कर्म की याद ना भी आए तो फल की तो याद आती है, तो ना उसको कर्म की याद आ रही है, ना उसको फल की याद आ रही है, जो किया ईश्वर के अर्पण, तो वो पूरी तरह से निष्काम होकर कर्म करता है। लेकिन वो स्थिति तब आ सकती है जब अंदर ईश्वर, जो अभी हम विचार से सोच रहे हैं कि अंदर है, उस ईश्वर का जब आपको अंदर अनुभव हो जाता है, तब ईश्वर की करनी आपको प्रैक्टिकली संसार में नजर आने लगती है। महाजी कहते हैं प्रेमी सारा जगत ईश्वर का प्रकाश उसको नजर आता है, अर्थात ईश्वर की मैनिफेस्टेशन नजर आती है, ईश्वर की रचना नजर आती है, उसके बिना तो किसी एक परमाणु का भी अस्तित्व नहीं, उस चेतन सत्ता के बगैर तो एक परमाणु का भी अस्तित्व नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसीलिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, समझिए, जो भी जीव जगत भी है, समझे, सबकी जो रचना का स्थायी कारण है वो ईश्वर ही है। तो इसीलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं, हर जगह वो व्याप्त है। तो वो भाव हमारा जब मन में रहता है, ये विवेक हमारे अंदर रहता है, अब आप विचार करके देखो कि इस बात का क्या अर्थ निकलता है। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। ये तन मन से सेवा नहीं, प्रारंभ से लेके अंत तक चलती रहती है। प्रारंभ में तो हम स्वार्थ कर्म भी करते हैं, स्वार्थ संबंध भी रखते हैं, आशाएं भी लोगों से रखते हैं, कर्म फल की तरफ भी देखते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं। प्रारंभ तो यहीं से होता है हमारा। सेवा में अहंकार भी होता है, सेवा की याद भी रहती है, मैंने ये सेवा की। एक्सपेक्ट भी करते हैं लोग हमको देखें सेवा करते हुए, और हमसे कहें भी बड़े अच्छे आप सेवादार हो, देखो ना हर चीज हमारे मन में तो उठती है ना। तो यहां से शुरू करते हैं और खत्म कहां होती आके, कि जीवन ही हमारा सेवा रूप हो जाता है। अब देखो महाराज जी का ये आखिरी जन्म था, बचपन से उनको ईश्वर का होश था ना, लेकिन ईश्वर में स्थिति तो नहीं थी उनकी, वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे लेकिन विकसित मनुष्य थे, हम अविकसित हैं वो विकसित मनुष्य थे। उनके अंदर ईश्वर विश्वास अव्वल दर्जे का था, हमारे अंदर फ्लिकर कर रहा है वो, संशय में आ जाता है, पता नहीं है भी नहीं है, इसलिए गलती कर जाते हैं, बेईमानी भी कर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, कौन देख रहा है, नहीं तो बेईमानी कैसे करोगे आप बताओ मुझे। यदि आपके अंदर ये भाव आ जाए बेईमानी करते हो कि ईश्वर देख रहा है मुझे, करोगे बेईमानी? आपको ना ईश्वर विश्वास है, ईश्वर को मानने वाले हो, और आपको ये आ जाए कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो करोगे बेईमानी? कभी नहीं करोगे, क्योंकि फौरन आ जाएगा, अरे ये अनधिकार चेष्टा है, इसकी सजा तो मुझे मिलेगी, ईश्वर देगा। सजा मैं भोगना चाहता नहीं। जब तू सजा भोगना नहीं चाहता, ईश्वर सजा देगा, क्योंकि अच्छा कर्म करता उसका सुख रूप फल भी तो वही देता है, तो गलत कर्म करा उसका दुख रूप फल नहीं देता तुझे, तो तेरा अंदर वहम नहीं रहता फिर कि देखा जाएगा, किसने देखा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का निश्चय होता है कि मिलेगा ही। तेरा अंतःकरण कह रहा है कि तूने गलत काम किया है, तो तुझे दुख रूप फल जरूर मिलेगा, तो बच नहीं सकता। तो इसीलिए वो आदमी ईश्वर की प्रेजेंस को अंदर फील करता है, वो अंतर्यामी है, समझ। जैसे मैं अपने मन की बात उठते ही तुरंत जान लेता हूं, मुझे देर लगती है क्या? मेरे मन में कोई संकल्प उठे नहीं, तो मुझे देर लगेगी जानने में, से तुरंत जान लेता हूं, क्योंकि मैं निरंतर मन के पास हूं, मन के संग हूं। उसी प्रकार ईश्वर भी निरंतर मेरे संग है, वो भी जान लेता तुरंत। तो इसीलिए जब आपके अंदर ये भाव विकसित होता है ईश्वर विश्वास का, कि वह ईश्वर मेरा निज रूप है, मेरा अपना है, मेरी देह को वही चला रहा है, मेरे जीवन को मेरे ही प्रार्थ के अनुसार वही चला रहा है, बाहर की सारी व्यवस्था वही कर रहा है इस प्रार्थ के अनुसार, इसलिए मेरा जीवन उससे एक मिनट भी अलग नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपकी स्थिति यहां तक आ जाती है, और जैसे जैसे आपकी ये स्थिति गहरी होगी, वैसे वैसे आपके अंदर देखेंगे कि जो दया का भाव है ना, वो भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखो कैसी दया होती है सत्पुरुषों के अंदर। महाराज जी एक बार गंगोठिया में अपने घर पर बैठे हुए थे, खेती बाड़ी आम होती है गांव में, समझे, बैठे हुए थे वरेंडे में, तो क्या देखते हैं सामने दूर पर फसल कट के चुकी थी, गेहूं की सारी वो खेतों में ऐसी खड़ा कर देते हैं, और पास में घर भी होते हैं उनके, किसी ने उसमें ईर्ष्यावश आग लगा दी। महाराज जी की आंखों से आंसू टपकने लगे उसको देख के, दृश्य को देख के, कि जिसके घर में आग लगी है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या दुख होगा उसके अंदर, कि 6 महीने का गुजारा उस फसल से होता है किसानों का। अब तो फिर भी लोग शहर में जाकर नौकरी कर लेते हैं, उस समय शहर कहां होते थे। महाराज जी ने जब पहला सम्मेलन किया था गंगोठिया में, तो 30 किलोमीटर दूर जाकर वो सामग्री यज्ञ के लिए खरीद के लाए थे अपने कंधे पर। 30 किलोमीटर तक ना बस होती थी, ना सड़क होती थी, गंगोठिया गांव से। अब सोचिए जरा सत्पुरुष क्या होगा जिसने पहला यज्ञ किया, पहला भंडारा किया, पहला सम्मेलन किया, तो 30 किलोमीटर दूर से सारी सामग्री अपने कंधे पर रखकर इकट्ठी की थी। तो विचार करिए जरा कि इन जीवों की सेवा के लिए जिसको, जिस सत्पुरुष को होश है कि ये जीव जो है किसी ईर्ष्या में जल रहे हैं अंदर। अब देखो एक किसान का परिवार पूरा का पूरा भूखा मरेगा, उसकी तो ईर्ष्या है कि मेरे पास नहीं है इसके पास है। ईर्ष्या तो किसी के गुण को देख के, किसी की वस्तु को देख के ही होती है ना भाई। आपने किसी कोई दुश्मन है तो दुश्मन ही होगी उसकी, लेकिन ईर्ष्या जो होती है वो किसी के सुख को देख के होती है। मनुष्य के अंदर ये स्वाभाविक है। आप यदि किसी को ऊंचा देखोगे, मान लिया आप ही दफ्तर में बैठे हो, प्रमोशन हो गया किसी का, आपका नहीं हुआ है, तो पहली करंट आपके अंदर ईर्ष्या क्या आएगी, देखो मेरा नहीं हुआ इसका हो गया, खुशी नहीं होगी। पहली जो करंट आएगी ईर्ष्या की आएगी, फिर आप संभाल लोगे अपने आप को, अरे मैं ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं, इसका भाग्यता हो गया, समझाओगे अपने मन को। लेकिन स्वाभाविक रूप में ही क्यों, ये ईर्ष्या अहंकार का ही ऑफशूट है। कि जब कोई आगे बढ़ता है तो आप नीचे हो जाते हो, स्वाभाविक रूप में आपके अहंकार को ठेस लगती है, इसीलिए वो अहंकार ईर्ष्या के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए गीता में इसको मत्सर कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, और इसको कहते हैं मत्सर, ये छठा विकार कहा गया इसको। लेकिन ये है अहंकार का ही अंग, इसलिए 5 विकार में ही वो कवर हो जाता है। तो इसीलिए आप सोचिए जरा कि यदि मार्ग आपका ईश्वर का नहीं है तो ये विकार कहाँ कहाँ आपको, मतलब कि चरित्र को खराब करते हैं, आपको पता है इसका होता? मतलब इसीलिए कहते हैं आदमी का पतन होना ही होना है। इसलिए संतावला से महाजी कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है, जो संसारिक जीवन है इसको रजोगुण जीवन कहते हैं। कि शारीरिक सुख के लिए जीना है नहीं, इसी के लिए उन्नति करना, इसी के लिए पढ़ाई करना, इसी के लिए कमाई करना, इसी के लिए परिवार बसाना, और कोई पर्पज ही नहीं है, इसको रजोगुण कहते हैं। इस भावना को रजोगुण कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल जाती है। तो इसीलिए ये तमोगुण में ना बदले तो आपको सतोगुण की तरफ जाना पड़ता है, और सतोगुण का आधार होता है ईश्वर विश्वास। तो जिस मनुष्य के जीवन में ईश्वर विश्वास नहीं है, सही ईश्वर विश्वास, वो देवी देवताओं की मान्यता वाला विश्वास नहीं, कि वहां तो भी स्वार्थ पूरा करते हैं हम लोग, वो भी रजोगुण है, वो देवता भी रजोगुण में है और आपकी पूजा भी रजोगुण में है, क्योंकि आपका मतलब ये है कि मेरा सुखी जीवन हो जाए, मेरे सुखों में कोई बाधा नहीं आए, और कोई उद्देश्य नहीं, तो रजोगुणी पूजा आपको कोई कल्याण नहीं करेगी। तो इसीलिए देखा नहीं है, चोर चोरी करने जाएगा पहले देवी देवता के आगे मन्नत मांग के आएगा, आज मुझे सफलता मिलनी चाहिए। तो इसीलिए वो तो अंधबुद्धि है ना। तो सतोगुण अर्थात सत पर जब तक जीवन आधारित नहीं है, ईश्वर के मार्ग पर चलने की यदि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका पतन होगा और आप तमोगुण की तरफ अनजाने में ही चले जाओगे। तो ये 5 विकार आपको घेरेंगे, फिर गलतियां करोगे। अब ईर्ष्या वजह से आग लगा दी, सत्पुरुष की आंखों से आंसू टपक रहे, कितना उनके अंदर अंदर एक नेचुरल दया है कि दूसरे के दुख को देखकर उनको फील तो हो रही है कम से कम कि देखो, और उसका पाप भी नजर आ रहा है कि अब इसकी आगे क्या दुर्दशा होने वाली है, जिसने इतना बड़ा कांड किया है पाप का। ईर्ष्या कुछ भी नहीं, एक संकल्प ही तो है, एक संकल्प के वशीभूत होकर उसने भविष्य के लिए अपना कितना बड़ा दुख खड़ा कर लिया है, जिसने ये आग लगाई है कि अब उतना ही दुख उसको मिलना है, नेचर देगी इसको, तो आगे उसने दुख के दिन पैदा कर लिए अपने। तो इसीलिए वाणी कह रही है कि 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, सारा संसार जल रहा है क्योंकि इसके वशीभूत होकर पाप करता है, हिंसा करता है, परिवार के साथ ही हिंसा करता है, गैर तो छोड़ो। तो इसीलिए मनुष्य को यदि मनुष्य रहना है तो ईश्वर विश्वास और ईश्वर उपासना के बगैर उसके बचने का कोई साधन है ही नहीं। ये दो चीजें उसके जीवन में हैं तो वो बच जाएगा, इंसान से देवता बन जाएगा वो, और यदि नहीं किया उसने तो इंसान से राक्षस बन जाएगा वो। देखने में बड़ा सूटेड बूटेड होगा लेकिन अंदर से वो राक्षस ही होगा। जैसे नेता करते हैं, नहीं कहते हैं, लड़ाते हैं लोगों को, कितने झगड़े करवाते हैं लोग, और बाहर से सफेद वस्त्र पहने रहते हैं। तो इसीलिए यही हालत हो जाती है हमारी, हम साफ सुथरे कपड़ों में राक्षस छुपे रहते हैं। तो मनुष्य को यदि अपना पतन रोकना है समझने और अपना सही उत्थान करना है तो ये भाव उसको अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा कि सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा आधार। ये तभी हो पाएगी समझने जब आपके अंदर ईश्वर विश्वास होगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए जब आप सेवा का सूत्र अपनाओगे, आप सही सेवा तो आप तब कर पाओगे। समाज सेवा तो दुनिया वाले भी करते हैं लेकिन इन विकारों में फिर भी त्रस्त रहते हैं। तो सतपुरुष जब सेवा की बात करते हैं तो वो निष्काम सेवा की बात करते हैं। तो निष्काम सेवा में ही प्रेम होता है, निष्काम सेवा में ही असली दया होती है, तभी हमारा उत्थान भी होता है।